नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बेलारूस के राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा कि रूस ने उनके देश के लिए सामरिक परमाणु हथियारों की पूरी खेप भेज दी है। इस घोषणा ने पड़ोसी देश पोलैंड और क्षेत्र में अन्य जगहों पर चिंता बढ़ा दी है। सेंट पीटर्सबर्ग में मॉस्को के नेतृत्व वाले आर्थिक मंच की एक बैठक में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बताया कि खेप की आपूर्ति अक्टूबर में पूरी हो गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने हथियार भेजे गए या इन्हें कहां तैनात किया गया है। युद्ध के मैदान में उपयोग किए जाने वाले ये सामरिक परमाणु आयुध लंबी दूरी की मिसाइलों में लगाए जा सकने वाले अधिक शक्तिशाली परमाणु आयुध की तुलना में कम दूरी की मारक क्षमता वाले हैं। रूस ने कहा कि वो बेलारूस को भेजे गए हथियारों पर नियंत्रण बनाए रखेगा। लुकाशेंको ने कहा कि उनके देश में रूसी परमाणु हथियारों की आपूर्ति का मकसद उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य पोलैंड की आक्रामकता को रोकना है। पोलैंड रूस के साथ युद्धरत यूक्रेन को सैन्य, मानवीय और राजनीतिक समर्थन दे रहा है तथा रूस एवं बेलारूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तरी इराक में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के खिलाफ जवाबी हमले का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि सोमवार को हुए हमले में एक अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। ईरान समर्थित मिलिशिया कत्तैब हिजबुल्ला और इससे संबद्ध समूहों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति को सोमवार को हमले की सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन को जवाबी कार्रवाई का विकल्प अपनाने का आदेश दिया। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने तुरंत योजना बनाई। बाद में बाइडेन ने कत्तैब हिजबुल्ला और इससे संबद्ध समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 3 स्थानों पर हमले का निर्देश दिया। अमेरिकी सैनिकों पर हाल ही में हुआ हमला 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से क्षेत्र में अमेरिकी बलों के खिलाफ बढ़ती धमकियों के बाद हुआ है। अमेरिका ने इस सब के लिए ईरान को दोषी ठहराया है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियां तेज होती जा रही है। इसके साथ ही पूरे अयोध्या का विकास भी किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह भारी बदलाव दिख रहा है। अयोध्या का नया एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का ये नाम बदला जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया जा सकता है। इसके लिए यूपी सरकार बाकायदा केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजने जा रही है। जल्द ही इसका फैसला किया जाना है। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 6 जनवरी से प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानें संचालित होने लगेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इसका आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। उनकी चेतावनियों के बावजूद स्पा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू एक धोखा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि वहाँ कोई हिंदू धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं तो अशांति फैलती है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में EG5 या एरिस कोविड वेरिएंट प्रमुख है। एरिस अन्य परिसंचारी उपभेदों के साथ ओमिक्रॉन के वंशज हैं। हालांकि ये स्ट्रेन मूल अल्फा और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम गंभीर दिखाई देते हैं, लेकिन लंबे समय तक कोविड का खतरा बना रहता है। तो नवीनतम डेटा लंबे समय तक कोविड के संभावना के बारे में क्या कहता है? आपको किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और लंबे समय तक कोविड से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए क्या किया जा सकता है? जब कोविड लॉन्ग कोविड बन जाता है, अधिकांश लोगों के लिए लंबे समय तक कोविड का मतलब है कोविड संक्रमण के बाद ठीक ना होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन लंबे समय तक चलने वाले कोविड को बीमारी के संक्रमण की शुरुआत से कम 3 महीने तक जारी रहने वाले या नए लक्षणों के रूप में परिभाषित करता है, जो कम से कम 2 महीने तक रहता है और इसे वैकल्पिक निदान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। सबसे आम लक्षणों में थकान, सांस फूलना, सिर दर्द और पेट दर्द शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।